आप सब हमारे पीछे दोहराइए ये 12 अक्षर का छोटा सा मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कोटि प्रणाम पूजन स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज के चरणों में और उनके उत्तराधिकारी पूज्य स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज के चरणों में और सब पधारे हुए यहाँ साधु संत मंडली और आप सब श्रोतागण और आयोजक आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रातःकाल हम ये बात कर रहे थे भगवद गीता के माध्यम से कथा करेंगे, बहुत सुंदर कथा का भी श्रवण आप सब लोग कर रहे थे। कथा अमर बना देती है, कथा अमर बना देती है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है, कथा अमर बनाती है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी। तो कथा करने वाला कौन होना चाहिए? परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में कथा करने वाले की महिमा कहते हुए कहते हैं, निवृतरुषयी उपगीय मानाय भव औषधि मनोभिराम। भव भव मतलब जन्म मृत्यु, औषधि मतलब दवाई, जन्म मृत्यु से बचने की दवाई, भव से मुक्त होने की दवाई, अमर होने की दवाई क्या है, क्या दवाई है वो? तो कहते दवाई क्या है, उत्तम श्लोक गुणानुवादान। उत्तम श्लोक गुणानुवादान, उत्तम श्लोकों के साथ जिस भगवान के गुणगान किया जाता है वो कथा दवाई है। किसकी दवाई है? भाव सागर से पार होने की, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की वो कथा है। अरे भाई ये दवाई है तो दवाई कैसे लेनी पड़ेगी? इस दवाई को लेने के लिए कहता खाने की दवाई है कि सुई लगेगी, कैसी दवाई है? बोला श्रोता ये दवाई कान से ली जाती है। अमर होने की दवाई कान से ली जाती है, श्रोता इक्षताम। भगवान को देखना है तो कान से देखा जाता है और जो भगवान को देख लेता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वो हमें हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमर कौन होता है? जो भगवान को देखता है। और भगवान को देखने के लिए भगवान ने कहा कान के द्वारा मेरे को देखना है। कान के द्वारा देखने का मतलब कथा सुनने के द्वारा भगवान को देखना है। भगवान को देखना है तो भगवान की कथा सुननी है। कथा सुनने से भगवान हृदय में स्फुरित होते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है, दवाई है रोग को मुक्त करने के लिए, मृत्यु से मुक्त करने के लिए, अमर बनाने के लिए दवाई तो है, और है भी कान से लेने के लिए, और कैसी है? मनोभिरामा, बड़ा मन के आराम देने वाली है, बड़ा सुख देने वाली है। लेकिन किससे लें? डॉक्टर कौन सा है? उस दवाई लेने के लिए डॉक्टर कौन सा? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। किससे दवाई ले? खांसी जुकाम हो जाए तो को तो मेडिकल स्टोर वाले से भी एक गोली ले लेंगे, नहीं तो जो भी अस्पताल नजदीक में कोई दवाखाना होगा, भैया दो दवाई दे दो खांसी। लेकिन दिल का ऑपरेशन कराना हो तो हर किसी के पास जाओगे क्या? मेडिकल स्टोर वाले को बोलोगे दिल का ऑपरेशन कर दो? नहीं, दिल का ऑपरेशन करना होगा तो बड़े दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन 20 आदमी से पूछोगे भैया तुम्हारे इलाज कहां से कराया? अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमारा ऑपरेशन वो अभी तक ठीक हूं मैं। तो ऐसे बहुत अच्छा, दिल का ऑपरेशन कराने के लिए तो ये तो बाबा दिल का ऑपरेशन कराना है, ये तो वो दिल लगाना है जो दिल धड़कता रहेगा भगवान के नाम के संग, तभी भगवान से दिल को कभी बंद होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा दिल बदलना है, वो दिल बदलने के लिए ऑपरेशन किससे करानी पड़े, डॉक्टर कौन होना चाहिए, कथा किससे सुननी चाहिए? तो ये एक शब्द है, कथा किससे? निवृत्त तृष्य मानाया, जो तृष्णा से मुक्त है, संसार के लोभ लालच नहीं है जिसको, जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार से। जैसे भोलेनाथ बैठे हैं कहां, कैलाश पे न घर है न झोपड़ी है न झुग्गी है, न दरवाजा है न ताला है न कुंडा है, न कुछ रखने के लिए रखा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए काम क्या करते हैं भोलेनाथ? कई देखो तो दो ही काम में सदा के लिए आनंद में रहते हैं, समाधि में स्थित है तो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, नहीं तो भगवान की कथा बताते हैं। कोई पुस्तक उठाओ तो सुनने को मिलेगा, शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनिए, तो या तो हरि कथा करते हैं या तो भगवान के ध्यान में रहते हैं। ऐसा सुनाने वाला निवृत्त तृष्यी, जिसकी कोई तृष्णा संसार में नहीं है, कुछ पाने की कुछ इच्छा नहीं है, भगवान को पा लिया तो, और कुछ बहुत अच्छी कथा बता रही थी पहले हमारे यहाँ साध्वी जी, भगवान को पा लिया तो फिर संसार में पाने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ ही तो उसके पास आ गया, भगवान मिल गया तो सब मिल गया। तो ऐसा जो पाने बोलने वाला हो, हरी कथा करने वाला ऐसा हो, कृष्ण भगवान कथा सुनाते हैं, अर्जुन सुनता है तो अमर हो गया। आज भी गीता के पन्नों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन के अर्जुन अमर हो गया, और उस वाणी सुनने वाले और भी अमर होते जा रहे। बहुवा ज्ञान, बहुत से लोग पूता मदभावम आगता, पवित्र होके मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। भगवान का भाव कैसा है? भगवान तो अमर है, सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद को भाव को प्राप्त करते हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कथा बता रहे, कल महाराज जी से पूछेंगे कि कथा कौन सी बताई थी भगवान शंकर ने माता पार्वती को, और सुन ली उसने, कौन सी वो कथा थी जिससे अमर हो गए? उस कथा का भी परिचय पूछना चाहिए कि कौन सी कथा अमर करती है, वो कौन सी कथा थी जिसको सुनाने वाला अगर भोलेनाथ शंकर जैसा निवृत्त दृष्टि हो, अथवा सुखदेव महाराज जैसा सुनाने वाला, यहाँ सुखदेव महाराज के लिए शब्द कहे हुए हैं कि कथा सुनाने वाला निवृत्त दृष्टि हो, उसको कोई संसार की लोभ लालच नहीं है, तो उसके हृदय से भगवान के जब शब्द निकलते हैं तो सामने वाले के दिल को, सामने वाले के हृदय को पवित्र कर देते हैं, इतना पवित्र करते हैं कि उसके अंदर भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। भगवान आके विराजमान हो जाते हैं तो काल किसको लेके जाता है? जब मृत्यु होती है तो काल सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। जब मन में भगवान बस गया, जब बुद्धि में भगवान को विराजमान कर दिया, अपना अहंकार और आपा छोड़ के भगवान के हवाले अपने आप को कर दिया, तो मृत्यु जब आएगा सूक्ष्म शरीर में, भगवान ही देखेगा तो नमस्कार करके चला जाएगा, तो मौत किसकी होगी? तो मृत्यु तो होगी ही नहीं, क्योंकि जिसको वो लेने आता है वहां तो पहले ही भगवान विराजमान है। तो नवे अध्याय की हम बात कर रहे थे भगवद गीता में, भगवान श्री राज विद्या राज गुह्यम में कहते हैं, ये जो मैं आपको ज्ञान अर्जुन बताने जा रहा हूं, जो भगवान कहते हैं मैं जो ज्ञान बताने जाना हूं, ये अमर बनाने का ज्ञान है, क्योंकि ये तो सारे ज्ञानों का राजा है, सारे ज्ञान का ये राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत पवित्र है, ये बहुत उत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण नवे अध्याय को शुरू ही करते हैं, सातवें अध्याय में भगवान ने कहा था ज्ञान विज्ञान सहितम तुमको रहा बताऊंगा। ज्ञान कहते हैं जानकारी को और विज्ञान कहते हैं अनुभव को। मैं
अनुभव का ज्ञान बताता हूं। अनुभव का ज्ञान का मतलब मैंने इसको प्राप्त किया हुआ है, उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। अनुभव का ज्ञान बताओ, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए सातवें अध्याय के आठ अंत में, इसलिए आठवें अध्याय में प्रश्नों का उत्तर हुआ। तो भगवान नवे अध्याय में ज्ञान विज्ञान को ही आगे बढ़ाते हैं, उसी ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ते। वक्ष्यामि अनुसूयवे, ये मैं अर्जुन आपको ज्ञान क्यों बता रहा हूं, वक्ष्यामि तुमको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। क्यों समझा रहे भगवान, अनुसूयवे, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अनुसूयवे, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, तुमको ईर्ष्या नहीं है। संसार में ईर्ष्या होती है, दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते, और यहां तक के भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनसे भी ईर्ष्या करते। ये अनुसूय वे शब्द भगवत गीता में दो चार बार आया है कि भगवान कहते हैं मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, अनुसूय वे वक्ष्यामि, तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या नहीं, जो करेगा वो प्रेम करेगा, दो ही चीजें कर सकते हो किसी से, या प्रेम करो, अगर प्रेम नहीं करोगे तो फिर उससे ईर्ष्या करोगे। ईर्ष्या को निकाल के जो प्रेम को स्थान देगा वो भगवान के इस अमर कथा का फल, अमरता को प्राप्त करेगा। ईर्ष्या को निकालो, दूसरे का सुख नहीं देख सकते, दूसरे की बड़ाई नहीं देख सकते हैं, उससे अंदर में जलते हैं, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। जीवन में जो अनुसूय बन गया, सूय का मतलब दोष देखना, अनुसूय का मतलब दोष नहीं देखना। एक माता अनुसूया नाम सुना है, अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनुसूया है, माता अनुसूया, जिसके पास तो भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं चल के गए थे, माता सीता जाके उनसे बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त किया था। तो अनुसूया जो जीवन में बनता है, जिसके जीवन में दोष देखने की दृष्टि नहीं रहती है, उसके घर में भगवान स्वयं चल के आता है, उसको भगवान को बुलाने की जाने की भी जरूरत नहीं है। अनुसूया बुलाने नहीं गई थी भगवान रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र स्वयं चल के उनके दरवाजे के ऊपर आए, आ मां दरवाजा खोली, और आप और माता सीता को कहते जाइए अनुसूया से शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो जो अनुसूया जीवन में बनता है, जो दोष दृष्टि रहित होता है, इस संसार में रहने का जो शैली है संत बताते हैं वो ये है, मधुमक्खी की तरह रहना चाहिए। कड़वे नीम के ऊपर बैठे अथवा करेले के ऊपर बैठे तो उसके अंदर से भी मीठा मधु निकालेगी, उसके अंदर से भी मिठास निकालेगी, और वो मधु ऐसी मीठी बनाएगी कि सबका कल्याण करेगी। दोष किसी के अंदर नहीं देखने का, सब में अच्छाई देखना, जिसको आ जाए। हर जीव के अंदर अच्छी अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, कोई संसार में बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई बिल्कुल बुरा नहीं है, अच्छाई और बुराई का समावेश सब में होता है। जो शांत पुरुष है वो अच्छाई को देख लेते हैं, और संसारी पुरुष केवल द्वेष को ही देखते हैं। जो मधुमक्खी की तरह जीवन में अनुसूय रहते हैं वो तो हर अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, और हर एक व्यक्ति को अच्छाई देखते हैं, उसकी अच्छाई का नाम बात करते हैं। और जो मक्खी की तरह होते हैं, जो मक्खी गंद के ऊपर बैठती है, कचरे के ऊपर बैठती है, फोड़े के ऊपर बैठती है, ऐसे लोग केवल बुराई ही उनको दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती है। तो भगवान कहते अनुसूय वे वक्ष्यामि, तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं कि तुमको ईर्ष्या, तुम ईर्ष्या रहित हो। भगवान से ईर्ष्या करना, भगवान की बात को न मानना, तीसरे अध्याय में भगवान ने बहुत बड़ी बात कहा है, वहां भी ये दोबारा शब्द कहा है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धयावन्तो अनुसूयन्तो। वहां भी बोल दिया ये मेरा मत, कौन सा मत आपका, भगवान ने निष्काम कर्म योग का मत बताया है। निष्काम कर्म योग का मतलब मेरे लिए किए हुए कर्म को जो करता है, ये मैं मतम इदम नित्यम, ये सदा के लिए है, आज मैं बात कर रहा हूं कल बदल दूंगा ऐसे नहीं है। एक पहले आया वो कह दिया, हमने कहा नहीं वो ठीक नहीं, अब नया बना रहा हूं, नहीं, ये मैं मतम इदम नित्यम। किसके लिए भगवान आपने ये बताया है, बोला अनुतिष्ठन्ति मानवाः, मानव जाति के लिए है, सर्वकालीन है, सब काल में है, सर्व देश में, सर्वभौमिक है, सब लोगों के लिए, सार्वजनिक है, किसी एक देश के लिए कि नहीं, किसी एक काल के नहीं है, नहीं, कि इस व्यक्ति के लिए, सबके लिए है, स्त्री पुरुष के लिए है, सब देशों के लिए है, आप मेरा मत। लेकिन इसका लाभ कौन ले लेगा, श्रद्धयावंतो, जिसको श्रद्धा होगी मेरे इन शब्दों में, जिसको श्रद्धा है, अनुसूयंतो, और जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, और जिसको श्रद्धा है, कर्म भी न लिप्त, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ेगा, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, उसको फल भुगतना ही नहीं पड़ेगा। तो कथा सुननी किससे चाहिए, छोड़वताम स्व कथा कृष्ण सुबह, ये कहा था भगवान की कथा भगवान के भक्तों के मुख से सुनने से बहुत सुंदर लिखा है कि भगवत कथा सर्वशक्तिशाली है, उसमें सर्वशक्ति भरी हुई है और भक्तों के संग में बैठकर उस कथा का श्रवण करने से हृदय पवित्र हो जाता है और भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है, उसमें कोई देर नहीं लगती है। भक्तों के संग में बैठकर भक्तों की भगवान की कथा सुनना और भक्तों के द्वारा कथा को सुनना, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवत गीता स्वयं भगवान बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुखदेव महाराज बता रहे हैं, तो ऐसा या तो भक्त निवृत्त ऋषि हो अथवा भगवान स्वयं जब कथा बताते हैं, ऐसी कथा भक्तों के संग में अगर सुनी जाए सुनाई जाए तो कल्याणकारी है, हृदय को पवित्र करने वाली है, भगवत प्राप्ति कराने वाली है। तो ये 3-4-5 दिन जो भी आप पधारें प्रतिदिन, भगवान की इस रसमयी कथा को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ, उदारता के साथ, इस कथा के माध्यम से भगवान को आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में आने दीजिए। ये दरवाजे कानों के खुले रहते हैं, इसके ऊपर कोई पर्दा भगवान ने नहीं लगाया। आंख में पर तो पर्दा है, बंद हो जाएगी, लेकिन कान खुले हुए हैं, भगवान को आने के दरवाजे खुले हुए हैं। ये भगवान अपने नाम के रूप में, अपनी कथा के रूप में, अपने गुण के रूप में, अपनी लीला के रूप में आपके कानों के द्वारा हृदय में अगर प्रविष्ट कर जाए तो आपका कल्याण हो जाए। अपन 7 बजे आरती का समय होगा, जैसे लाइट आए आरती करेंगे, तब तक भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। तो अभी आरती का समय, सब माताओं को घर में जाना है, कल सुबह कथा करेंगे।